ओम शांति। आप सभी के बीच में आज हमारी आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी पधारी हैं। आप 1960 से जब प्रजापिता ब्रह्मा दादा लेखराज जी थे तभी से उनके अंग संग रही हैं और बचपन से ही वैसे इस ज्ञान का इन्होंने अध्ययन भी किया है और ज्ञान सुनाने में भी सबसे पहले जब जी जागरण और जी टीवी में इन चैनलों में आध्यात्मिक प्रवचन शुरू हुए थे तब इस संस्था के माध्यम से आदरणीय शीलू दीदी जी ने संस्था का परिचय और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो ज्ञान धारा है उसका प्रवाह टीवी और मीडिया के माध्यम से विश्व में रखा था। विश्व के बहुत सारे देशों में आपने इस ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार भी किया है और प्रजापिता ब्रह्मा के साथ रहने से उनके दिव्य गुणों का अपने अंदर आवाहन भी किया है, उन गुणों को धारण भी किया है और बाबा के अंग संग रहने के कारण इनका जो अनुभव है वो आप सभी आज सुनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की यज्ञ की जो हिस्ट्री है वो हम सभी सुनेंगे। उससे पहले मैं आदरणीय दीदी जी का फूलों से स्वागत करती हूँ।
ओम शांति। सभी कहेंगे ओम शांति। अभी अभी हम सब ने गीत सुना, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, नव युग का निर्माण करने शिव ने जिनमें स्थान लिया। बहुत सुंदर ये गीत है। तो उस दिव्य पुरुष की जीवन कहानी मैं आप तक रखना चाहूंगी, कैसे शिव परमात्मा ने उनमें दिव्य प्रवेश कर उनसे नव युग के निर्माण करने का कार्य सौंपा। तो कौन थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा जो इस संस्था के स्थापक हैं, कैसे ये कार्य उन्होंने शुरू किया जो आज से 80 वर्ष पूर्व 1936 में 36-37 में आरंभ हुआ और आज 80 वर्ष हो चुके हैं। तो ये 80 वर्षों की यात्रा मैं आपको 80 मिनटों से तो थोड़ा कम ही लेंगे पूरी करने की कोशिश करूंगी। तो कौन थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा? और मेरा ये सौभाग्य था जैसे बताया कि कैसे उनके द्वारा ही हमें ये अलौकिक जन्म मिला मुंबई में। मैं मुंबई की रहवासी थी और बाबा मुंबई में आए थे तो उनको देखकर उनके जैसे ही मैं करीब गई तो मुझे जो अनुभव हुआ, 12 साल की थी उस समय केवल, और ऐसे लगा जैसे यही मेरे सच्चे पिता हैं, अलौकिक पिता। तो कौन थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा? और ये नाम उनको किसी ने, देहधारी ने नहीं दिया, लेकिन स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप जो सदा शिव है, कल्याणकारी है, उन्होंने ही इनको ये नाम दिया, प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, सारी प्रजा का वो पिता है, परमात्मा तो वो परम पिता है, वो आत्माओं का पिता है, पर जिसके द्वारा ये सृष्टि रची माना गया है उनको कहेंगे ब्रह्मा। तो सारी प्रजा का पिता और परमात्मा ने ये नाम क्यों इनको दिया वो भी एक अद्भुत कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। और कैसे इन्होंने एक बीज बोया अपने तन मन धन का, और आज वट वृक्ष की तरह यह संस्था की शाखाएं 137 से भी अधिक देशों में फैल चुकी है, और आप जैसे लाखों परिवार इसके सदस्य हैं जो अपने परिवार में रहते हुए भी नौकरी धंधा कार्य व्यवहार सब कुछ करते हुए भी, अपनी जिम्मेवारियां संभालते हुए भी ये ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करते हैं। और हमारे जैसी हजारों बहनें और कई भाई भी हैं जिन्होंने अपना जीवन इसमें समर्पित किया है 24/7 अगर कहें, कैसे इस सेवा में लगे हुए हैं, परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर उनसे शक्ति लेकर ये ईश्वरी कार्य कर रहे हैं। तो कौन थे पिताश्री ब्रह्मा बाबा? इनका पूर्व नाम दादा लेखराज था और लखीराज बाबू के नाम से बहुत प्रसिद्ध जौहरी थे। हीरे जवाहरात का धंधा करते थे। कलकत्ता में इनकी बहुत बड़ी शोरूम थी। 1876 में आपका जन्म हुआ था और लौकिक परिवार तो बहुत ही साधारण था, किसी गांव में रहते थे हैदराबाद सिंध जो उस समय अविभाजित भारत था उसके भी एक गांव में रहते थे। इनके पिता तो एक ऑर्डिनरी स्कूल मास्टर थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन इस साधारण परिवार में जन्म लेकर के भी कैसे अपने जीवन काल में इतनी तरक्की की जो बहुत बड़े प्रसिद्ध जौहरी हो गए। तो कलकत्ता में इनकी दुकान थी और उस समय हीरे जवाहरात कौन खरीदते थे? तो धनवान होंगे वही, उनके जेवर बाबा बनवाते थे और खास जो उस समय के राजा महाराजा होते थे वो इनके खास ग्राहक थे। यहाँ तक कि उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, नेपाल तक भी जो भी राजघराने के थे वे सब बाबा के ग्राहक थे। और अंग्रेज कलकत्ता से ही गुजरते थे, वहाँ ही वो राजधानी थी। 1912 तक तो कलकत्ता ही राजधानी थी, बाद में दिल्ली में ट्रांसफर हुई तो कलकत्ता ही उतरते थे बाय शिप। और कैसे हीरे जवाहरातों के गहने खरीदते थे इनकी दुकान से। तो इतने धनी तो थे ही, पर जितने ही धनी थे उतने ही बहुत बड़े दानी थे। कोई भी इनके द्वार पर आता था, कुछ भी मांगता था तो कभी भी हाथ खाली उनको नहीं भेजते थे। यहाँ तक कि साधु संत महात्माएं भी उनके घर में रह करके कथाएं या प्रवचन देते थे। तो जितने ही धनी थे, दानी थे, उतने ही बड़े भक्त थे। खास विष्णु की भक्ति करते थे। वल्भाचारी कट्टर वैष्णव थे, श्रीनाथ उनके इष्ट थे और उनकी ही मूर्ति, उनका ही चित्र अपने साथ रखते थे, उनका ही ध्यान करते थे। कोई ऐसा मंदिर भारत का छोड़ा नहीं होगा जहाँ वे दर्शन करने न गए हो, यहाँ तक कि अमरनाथ की भी यात्रा की थी। तो इतनी भक्ति भावना थी। और अपने जीवन काल में 12 गुरु किए। व्यक्ति एक गुरु करता है, समझता मैंने गुरु कर लिया है बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन 12 गुरु क्यों? क्योंकि इनके अंतर में खोज थी सत्य को जानने की, ईश्वर को जानने की, खुद को पहचानने की, जीवन के लक्ष्य को समझने की। इसलिए बहुत शास्त्र भी पढ़ डाले, कई गुरु भी किए, लेकिन उनको संतोषजनक जो अनुभव चाहिए वो नहीं हुआ। तो इसीलिए परिवार में कोई कमी नहीं थी। 5 बच्चे थे, बड़ा सुखी परिवार था, तीन बेटियां दो बेटे, और सबकी लगभग शादी करा चुके थे, पोतरे पोतरियां भी थे। और जब उनकी उम्र 60 साल की हुई तब कैसे इनके जीवन में परिवर्तन आया। तो 60 साल की उम्र तक तो अपना धन बहुत कुछ सेवा में लगाया, दान पुण्य करके, साधु संतों का संग करते करके, लेकिन एक जीवन की जो खोज थी उस खोज को वो आगे बढ़ाते ही रहे। सत्य को जानने की बहुत उत्कंठा थी। तो कैसे जब उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की हो चली थी, जीवन में सब कुछ पा लिया था, बिल्कुल तृप्त आत्मा थी, लेकिन ज्ञान की पिपासी थी। तो कैसे एक दिन की बात है, 1936 में बाबा ब्रह्मा बाबा हम कहते हैं विष्णु के ध्यान में बैठे थे, क्योंकि विष्णु ही उनके इष्ट थे। तो कैसे उनके ध्यान में बैठे थे और अचानक वे अंतर ध्यान हो गए और उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। एक दिव्य स्वरूप, चतुर्भुज, चार भुजाधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु का उनको साक्षात्कार हुआ। और बाबा देखते रहे कैसे विष्णु के अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग उनके जो कई छवियां हैं, कई मूर्तियां हैं भारत के कोने कोने में विष्णु की, एक एक करके उनके सामने आते गए। और हर एक मूर्ति ने या जो दर्शन किया, ध्यान किया, जो उनको साक्षात्कार हुआ, उस एक एक ने उनको एक वरदान दिया। वही वरदान सभी ने दिया, अनेक स्वरूप विष्णु के उनके सामने आते गए और हर स्वरूप ने एक ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम भी मेरे जैसे हो, तत्त्वम। बहुत देर तक ये अनुभव करता रहा, तत्त्वम का वरदान प्राप्त करता रहा। और जब ध्यान से नीचे उतरा तो बाबा के मन में बहुत विचार चले कि ये जो सारे विष्णु के अलग अलग स्वरूप के मुझे दर्शन हुए और हरेक स्वरूप ने यही वरदान दिया कि तुम मेरे समान हो, इसका मतलब क्या है? मैं इनके समान कैसे हूँ? मैं तो इनका दास हूँ, मैं तो इनका भक्त हूँ, इनका सेवक हूँ, तो भक्ति करता हूँ, तो मैं इन जैसे जैसा कैसे हूँ? मैं तो इनकी चरणों की धूल के भी बराबर नहीं हूँ, इतने हद तक अब भक्ति बाबा करते थे। तो अब इस प्रश्न का समाधान लेने के लिए अपने गुरु के पास गए, जो उस समय उनके गुरु थे। ये 1936 की बात है जब उनकी उम्र लगभग 60 साल की थी, और 60 साल की उम्र में तो जैसे रिटायरमेंट तो होती ही है। तो जब गुरु को ये बात सुनाई, अब गुरु ने भी सोचा अवश्य कि क्या इसका अर्थ हो सकता है, लेकिन किसका मोबाइल बज रहा है, कृपया मोबाइल बंद रखें। बंद करना नहीं आता, या तो बाहर जाएं, बाहर स्विच ऑफ कर दें। बाहर ले जाएं प्लीज, हाँ, इनका आवाज डिस्टर्बेंस होती है, बाहर ले जाएं। बाहर ले जाए ना बहन जी, बाहर लेकर स्विच ऑफ कर दे। तो जब गुरु से ये प्रश्न किया तो गुरु को भी समझ में नहीं आया, परंतु एक बात अवश्य उन्होंने समझी कि अवश्य इसमें कोई बहुत बड़ा राज है कि तुम मेरे जैसे ही हो। तो गुरु ने उनको राय दी कि अब इस राज को समझने के लिए आप एकांत वास में चले जाइए, बिल्कुल एकांत शांत वास में चले जाइए, और उस एकांत वास में आपको शायद और प्रेरणा मिले और आपको ये समझ आ जाए कि कैसे ये वरदान मिला। क्योंकि जब भी किसी को अपने इष्ट का दर्शन होता है, कई होते अपने इष्ट की भक्ति करते करते उनका दर्शन हो जाता है, तो वो जो दर्शनीय मुहूर्त होती है वो उनको वरदान देती है। और वरदान अक्सर क्या होता है, तथास्तु, कि आपकी इच्छा पूरी होगी, जो आपके मन में इच्छा है वो पूरी होगी, वैसा ही होगा, तथास्तु। अब ये वरदान तो कुछ और ही था, तुम मेरे जैसे हो। अब इसका उत्तर कहाँ से मिले, तो गुरु ने कहा कि एकांतवास में जाओ, शायद आपको कुछ और प्रेरणा मिले और साक्षात्कार हो और उससे आपको ईश्वर कुछ और राज स्पष्ट करे। तो एकांतवास में जाने के लिए बाबा बनारस चले गए, हैदराबाद सिंध में रहते थे, कलकत्ता आते जाते थे, तो बनारस में बाबा के एक मित्र रहते थे। सोचा मैं गंगा किनारे बैठकर या उस मित्र की कोठी का एक बहुत में बहुत बगीचा था बड़ा, वहाँ बैठकर मैं तपस्या भी करूँगा और इंतजार करूँगा कि भगवान मुझे ये राज स्पष्ट करे कि मैं इन जैसा कैसे हूँ, क्योंकि विष्णु की ही भक्ति करते थे। तो कैसे, एक दिन की बात है, बाबा ध्यान में ही बैठे थे कि अचानक उनको कलयुगी दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। एक भयंकर विनाश देखा बाबा ने, जिसमें तीन तरीकों से इस कलयुगी दुनिया का विनाश होते हुए देखा। एक और बाबा ने देखा अणु युद्ध, कैसे हवाई जहाज मंडरा रहे हैं चारों ओर और उनमें से मिसाइल गिर रहे हैं, और जहाँ जहाँ मिसाइल गिर रहे हैं वहाँ आग ही आग भड़क रही है, और देखते ही देखते बाबा ने देखा कैसे सब राख हो गया, बिल्कुल राख, चारों तरफ न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे और सारी तबाही मच गई, सबका जलकर राख हो गया। और फिर दूसरी तरफ बाबा ने देखा ग्रह युद्ध हो रहा है, कैसे आपस में लड़ रहे हैं, बंदूकें चल रही है, तलवारें चल रही है, एक दो का गला काट रहे हैं, और देखते ही देखते बाबा ने देखा खून की नदियां चारों ओर बह रही है, लाशें पड़ी हुई है, लोग चिल्ला रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, रो रहे हैं, मानो वो दुख दर्द का दृश्य बाबा से देखा नहीं गया, बड़ा भयावह था। और फिर तीसरी तरफ बाबा ने देखा प्राकृतिक आपदाएं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पांचों ही तत्व इस सृष्टि में तबाही मचा रहे हैं, और देखते ही देखते बाबा ने देखा ये सारा संसार नष्ट हो गया पूरा। तो बाबा की आंखों से तो आंसू आने लगी, मैं क्या देख रहा हूँ भगवान, क्या दुनिया ऐसे खत्म हो जाएगी, फिर हे भगवान आपने ये दुनिया बनाई क्यों, यही प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुए, अगर ऐसे ही नष्ट होनी थी तो बनाई क्यों, तो हे भगवान अब मुझे क्या करना है वो भी तो आप बताएं, मेरा क्या उसमें पार्ट है, या जो भी मुझे करना क्या है, ये बाबा के मन में प्रश्न थे। तो वैराग्य तो बहुत आ गया इस दुनिया से, और लगा बस अब भी सब छोड़ करके मैं यही सन्यासी बन जाऊं, यहाँ तक भी बाबा को संकल्प आया। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने एक और दृश्य देखा, जिसमें परम धाम देखा, एक अखंड ज्योति का महतत्व देखा, चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश, और उसमें छोटे 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 सितारे देखे, और क्या देखा है कि कैसे धरती से छोटे छोटे ये आत्माएं सितारे सब उस धाम में पहुंच गई, और एक उल्टा वृक्ष, सितारों का उल्टा वृक्ष जिसमें बीज ऊपर और एक नीचे शाखाएं और एक सुंदर वृक्ष सितारों का बाबा ने देखा, ये आत्माओं का झाड़ था, जो परम धाम में आत्माओं का निवास है वो साक्षात्कार किया। और फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने देखा वो जो सितारों का झाड़ था, उल्टा झाड़ बीज ऊपर, उस झाड़ से ये छोटे छोटे सितारे धीरे धीरे करके एक एक करके नीचे आते गए, नीचे आते गए, और जैसे धरती पर आते गए एक एक सितारा बदलता बदलता एक देवता या देवी का रूप धारण करता गया। ये सब साक्षात्कार में देखा, और देखते देखते बाबा ने देखा एक सुंदर संसार बन गया, पांचों ही तत्वों का चरम सौंदर्य क्या होता है वो बाबा ने उस दृश्य में देखा। और देखते देखते बाबा की तो आंखें शीतल हो गई, कितना सुंदर दृश्य था। और बाबा देख ही रहे थे कि अचानक वो दृश्य बदलकर दूसरा दृश्य आ गया, जिसमें बाबा ने एक सोने का महल देखा, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे उस महल के सोने में, और लक्ष्मी नारायण सिंहासन पर विराजमान थे। और धीरे धीरे वे सिंहासन से बाहर आए, उतरे और आंगन में आए, एक सुंदर बाग में टहलने लगे, उनका इतना स्वागत हुआ। और एक आकाशवाणी बाबा को हुई उस समय, लखीराज उठो जागो, इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी स्वर्गीय सृष्टि स्थापित होनी है, आनी है, इसलिए जागो उठो और आपको ऐसी दुनिया बनानी है। अब ये इतना बड़ा कार्य भगवान ने इनको दिया कि ऐसी दुनिया आपको बनानी है। और ये दृश्य देखते ही देखते जैसे बाबा उसमें खो गए, और जब वापस होश में आए तो बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया। काम तो भगवान ने बहुत बड़ा दे दिया कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है, लेकिन कैसे बनानी है ये तो बताया नहीं। एक तरफ वैराग आ गया विनाश देख करके, और दूसरी ओर ये कार्य मिला, पर उसके लिए क्या करना होगा ये तो बताया नहीं। अब फिर भी असमंजस था कि आखिर मुझे करना क्या है, ये लक्ष्य तो दिया पर मुझे क्या करना है। हर एक तो यही सोचेगा ना, मुझे मैं क्या करूं उसके लिए, वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात तो उनको समझ में आ गई कि भगवान को मुझे बहुत बड़ा कार्य देना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी देनी है, तो मैं जो ये धंधा कर रहा हूँ ये तो मेरे से नहीं होगा, अभी मुझे इनसे ऊंचा कार्य करना है। ये तो हीरे जवाहरात तो फिर भी पत्थर है, मुझे तो सच्चे हीरों का व्यापार करना है। तो उसके लिए बाबा ने क्या सोचा कि मैं कलकत्ता जाऊं, बनारस में तो थे ही, मैं कलकत्ता जाऊं और अपने पार्टनर उनके जो थे, जो दुकान संभाल रहे थे वो शोरूम, मैं वहां जाकर के अपने पार्टनर को ये बातें कहूं कि कैसे अब ये मेरे से और आगे नहीं हो सकेगा कार्य। अब जब वापस गए दुकान में पार्टनर को ये बातें कही तो पार्टनर तो हैरान हो गए, और कहा कि इसने कहा मुझे तो सब वाइंड अप करना है, जो मेरा हिस्सा है वो मैं ले लूंगा और बाकी आप ये संभालो। तो बहुत कुछ बड़े रिलक्टेंटली, बहुत ही भारी मन से पार्टनर ने स्वीकार किया जो उनके भागीदार थे, और बाबा वापस बनारस से कलकत्ता, कलकत्ता से वापस हैदराबाद गए। तो जब हैदराबाद वापस आए इतना परिवर्तन उनके जीवन में आया, क्योंकि एक और विनाश देखा, दूसरी ओर एक नई दुनिया देखी, और उनको भगवान ने जिम्मेदारी दी कि आपको ऐसी दुनिया बनानी है, अब उसके लिए मुझे क्या करना है वो भी सोच चलने लगा। लेकिन उनका इतनी सिंप्लिसिटी उनमें आ गई, जो जैसे धोती कुर्ता बस यही पहनते थे, और कभी प्रोग्राम्स में तो अच्छा ठाट वाट रहता होगा क्योंकि ज्वेलरी थी, ज्वेलर थे, और राजाओं महाराजाओं से उठना बैठना, अंग्रेजों से उठना बैठना होता था। लेकिन बाबा इतने सिंपल हो गए जो घर वाले भी हैरान हो गए कि इनको क्या हो गया है, और बिल्कुल न्यारे प्यारे रहने लगे, बिजनेस तो खत्म कर ली थी। तो एक दिन की बात है, बाबा अपने कमरे में बैठे थे, बिल्कुल एकांत में और ईश्वर से यही कह रहे थे, भगवान मुझे आप बताएं कि मुझे करना क्या है, भगवान कौन है ये भी उनको सही परिचय तो था नहीं, बस विष्णु को ही अपना इष्ट मानते थे। तो कैसे एक दिन की बात है, उनको ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने देखा एक बहुत दिव्य प्रकाश, बहुत तेजोमय प्रकाश, लेकिन इतना जितना प्रकाशमय था उतना ही शीतल था। ये ऐसा सुंदर स्वरूप बाबा ने देखा और धीरे धीरे बाबा ने देखा वो स्वरूप उनके निकट आता गया, उनके निकट आते 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 बाबा ने देखा वो उनमें समा गया, उनके अंदर में समा गया। और बाबा की आंखें तो बंद थी, अब उनके जो फैमिली मेंबर्स थे घर में ही था वो, उनकी बहू विशेष वो देखने आई तो देखा कि बाबा का ललाट इतना चमक रहा था, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। तो उनकी बहू को तो कुछ समझ में नहीं आया ये क्या बाबा अनुभव कर रहे हैं, और थोड़ा और निकट गई तो बाबा के मुख से जैसे कोई गहरी आवाज से कोई शब्द निकल रहे थे, और वो शब्द क्या थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निजानंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। यानी शिव परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा ने उनमें दिव्य प्रवेश किया और उनके मुख द्वारा अपना परिचय दिया। अब बाबा की आंखें तो बंद थी और चेहरा एकदम चमक रहा था, और बहू ने ये शब्द सुने वो भी समझ नहीं सकी ये कौन बोल रहा है, आवाज भी कुछ गहरी आवाज थी, कोई आकाशवाणी के रूप में थी, और बाबा के होंठ हिल रहे थे, आंखें बंद थी। फिर जब बाबा ध्यान से नीचे उतरे तो घर वाले तब तक पहुंच गए थे देखने ये बाबा को क्या अनुभव हुआ। तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया? तो बाबा ने कहा कोई प्रकाश था, बहुत तेजोमय, इतना दिव्य, इतना शीतल, इतना तेज, बस वर्णन करता गया, और इतना प्यारा, और धीरे 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 कैसे मेरे अंदर प्रवेश हुआ ये मैंने अनुभव किया, कोई लाइट थी, कोई माइट थी, बस ये अनुभव जो उसने किया बाबा बताते गए, और अब कोई ऐसी शक्ति का मुझे अनुभव हो रहा है, पर मुझे आगे कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, ये बाबा ने उस समय कही। और फिर क्या हुआ, उसके बाद तो चमत्कार होने लगे, चमत्कार, क्या चमत्कार होने लगे, बाबा जो धोती कुर्ता पहने हुए मानो खड़े हैं, और जो उनके सामने आते थे बाबा की उन पर केवल दृष्टि पड़ती थी, अचानक वो जो देखते थे देखते देखते बाबा का जो धोती कुर्ता सफेद वो सब ओझल हो जाता था, और जैसे श्री कृष्ण खड़े हैं ये वो देखने लगते थे। अब एक बहुत बड़ी न्यूज बन गई कि दादा लेखराज को तो एक चमत्कारिक शक्ति प्राप्त हुई है, जो उनके सामने जाता है उनसे कृष्ण के दर्शन होते हैं। केवल उतना ही नहीं, लोगों को घर बैठे भी वो होने लगे दर्शन, जिसमें कई देखते थे कि कैसे एक बगीचा है उसमें छोटा सा मिचनो छोटा कृष्ण रास कर रहा है, और उनको लगता है वो मेरे तरफ आ रहा है, और जैसे वो नजदीक जाते ध्यान में देखते थे, और उनके नजदीक जा रहे हैं तो वो दूर हट रहा है, और इशारे से वो कह रहा है क्योंकि उनके सामने ब्रह्मा बाबा की छवि आ जाती थी, सफेद वस्त्रधारी की छवि, और वो कहता है कि अगर मेरे से मिलना है पहले इनके पास जाओ, इनके पास जाओ फिर आप मेरे से मिल सकेंगे। अब ये कौन थे सभी तो नहीं जानते थे, जो उनके सामने होते थे उनसे तो उनको तो कृष्ण के दर्शन इनसे होते थे, पर जो नहीं जानते थे उनको भी अनुभव होने लगे, और ढूंढ ढूंढ करके कैसे बाबा के पास पहुंच जाते थे। अब ये इतनी बड़ी क्रांति हो गई उस समय, इतनी बड़ी क्रांति कि अमेरिका में एक टाइम मैगजीन निकलती है एवरी मंथ, उस टाइम मैगजीन में इंटरनेशनल न्यूज आती है, उस मैगजीन के अंदर भी ये विशेष लेख छपा था कि भारत में हैदराबाद सिंध में, उस समय तो अविभाजित भारत था, वहाँ एक दादा लेखराज है जिसके पास एक चमत्कारिक शक्ति है और जो उनको देखता है उनको कृष्ण के दर्शन उनसे होते हैं। और बाबा ओम की ध्वनि करते थे कई बार, और ओम की इतनी ध्वनि करते करते जैसे जो सभा में बैठे होते थे कई तो ध्यान में चले जाते थे और कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं, ऐसे अनुभव होता था। तो ये एक क्रांति थी, बहुत जबरदस्त क्रांति थी। फिर दूसरी क्रांति क्या हुई कि जिनको साक्षात्कार होता था वो विशेष करके बहने होती थी, भाइयों को कम, पुरुषों को कम होता था, स्त्रियों को होता था, उसमें भी कन्याएं, कन्याओं को तो बहुत होता था। अब कैसे वो बाबा के पास आई तो आपको हम कुछ उदाहरण देंगे। आप ओम राधे हैं जिनको हम मम्मा कहते हैं, आप उस समय 16 साल की थी, 15-16 साल की थी, और इनके पिता की डेथ हो गई थी क्योंकि ये भी, इनके फादर भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, हीरो का व्यापार करते थे और अचानक उनको घाटा पड़ा तो जैसे वो सदमा सहन नहीं कर सके और हार्ट फेल हो गए थे। तो इनकी जो माँ थी वो बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। अब विधवा होना माना एक अभिशाप था, कोई भी विधवा के नजदीक नहीं जाना चाहता था, समझता था ये कोई अभिशाप है। इतना शोषण था उस समय नारी के प्रति भी, इतना उसको धिकारते थे विधवा को मानो उस रूप से। तो इनकी माँ तो रोती रहती थी, काले काले कपड़े पहन करके शोक मनाती थी और मानो बिल्कुल इनकी ऐसी दशा देख के इनकी बेटी को ये सहा नहीं गया। और आप जो थी राधे इनका नाम था, आप बहुत टैलेंटेड लड़की थी, मानो अवार्ड लेती थी स्कूल में, गीत संगीत नृत्य सारी कलाएं थी उसमें अवार्ड लेती थी, हारमोनियम और सितार बहुत सुंदर रूप से बजाती थी और आवाज बहुत सुरीली थी, उसमें भी इनको अवार्ड मिले थे स्कूल में, तो ये भी फेमस थी। अब ये अपनी माँ की ये दुर्दशा देख के उसको रहा नहीं गया, तो किसी ने उनको कहा कि आप इनको दादा लेखराज के पास ले जाओ तो ये जो इतना रो रही है वो रोना बंद करेगी, उनको कृष्ण के दर्शन होंगे तो उसको शांति मिलेगी। तो जैसे अपनी माँ को ले गई बाबा के पास, रोती रोती गई माँ, और जैसे ही बाबा को देखा सचमुच बाबा से उनको कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और हंसने लगी, इतना हंसने लगी। अब ये भी न्यूज बन गई कि राधे की माँ रोती रोती गई, हंसती हंसती आई, यानी इतना ये परिवर्तन उनके जीवन में आ गया। अब ये गीत बहुत अच्छा गाती थी तो बाबा उस समय भजन बनाते थे, तो बाबा ने इनको कहा कि आप ये भजन का सुर निकाल के तर्ज निकाल के आप गाओ, और बाबा जैसे ओम की ध्वनि करते तुम भी ओम की ध्वनि करो। इनके फादर को तो बाबा अच्छी तरह से जानते थे और इनको भी जानते थे क्योंकि एक छोटा सा शहर था हैदराबाद सिंध, तो सब एक दो को, बिजनेसमैन तो सब एक दो को जानते ही हैं। तो इसने जैसे ही ओम की ध्वनि की या गीत गाया, अब इनको जैसे देखते थे तो इनसे राधे का साक्षात्कार होने लगा, बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार। वो तो 60 वर्ष के थे और ये तो 16 साल की थी, और लौकिक में कोई संबंध नहीं था इनका, वो अलग घर के, लेकिन इतना उनसे एक वो आकर्षण हुआ, इनमें इतना आकर्षण था कि सब इनको भी बहुत स्नेह देने लगे, इनके प्रति भी बहुत आदर रखने लगे, और ये दोनों माँ बेटी आए और सीधा बाबा को समर्पित हो गए क्योंकि इनका भाई था वो भी गुजर गए थे, तो बस माँ बेटी थे और बाबा को अपना जीवन समर्पित किया। तो ऐसे देखते देखते अनेक आए और अपना जीवन जैसे बाबा के आगे समर्पित किया। तो दूसरा एग्जाम्पल बताएं दादी प्रकाश मणि जी का, जिनका आप फोटो देख रहे हैं, आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रही, बाबा के देह त्याग के बाद 69 से लेकर 2007 तक, तो आप 14-15 साल की थी उस समय और 10वीं कक्षा पढ़ती थी। इनको घर बैठे साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण का, ये भी कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी और इनके पिताजी ज्योतिषी थे, ज्योतिष विद्या जानते थे, तो इनकी जन्म पत्री भी उसने ही बनाई थी और इनसे ये उनको भासना आई कि मेरी बेटी मीराबाई की तरह बनेगी, अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएगी। तो कृष्ण की वैसे ही भक्ति करती थी, तो घर बैठे इनको सवेरे सवेरे कृष्ण का दर्शन हुआ और फिर उनके जैसे निकट गई तो बाबा खड़े थे और बाबा को तो जानती नहीं थी, पर ये उसने अनुभव किया पर किसी को बताया नहीं। फिर जब स्कूल गई तब तक तो सारी न्यूज फैल गई थी पूरे शहर में कि दादा लेखराज से तो कृष्ण के दर्शन होते हैं, तो जो और लड़कियां थी स्कूल की उन्होंने कहा चलो हम कल जाएंगे देखेंगे क्या होता है कैसे दर्शन होते हैं। तो उसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं, तो शाम को जब स्कूल से घर लौटी तो ये जब तक पूछे पिता ने ही इनसे कहा कि बेटी हमने सुना है दादा लेखराज के वहाँ एक चमत्कारिक शक्ति है उनमें, उनसे कृष्ण के दर्शन होते हैं, तुम जाकर देख कर आओ क्या होता है क्या अनुभव करते हैं लोग, तुम तो वैसे ही कृष्ण की भक्ति करती हो। तो अगले दिन ये सब सखियां मिल करके गई सत्संग में। रोज सुबह बाबा 10 बजे सत्संग कराते थे और कई माताएं बहनें इकट्ठी हो जाती थी सत्संग सुनने। तो जैसे ही बाबा के सामने गई और बाबा से दृष्टि ली तुरंत ध्यान में चली गई और जो दृश्य उसने देखा था पिछले दिन एक बगीचे में कृष्ण रास कर रहा, तो खुद भी जैसे 4-5 साल की, कृष्ण भी उतनी आयु का और उसे रास कर रहे हैं। अब सत्संग पूरा हुआ सब कुछ पूरा हुआ ये वहीं बैठी थी। अब बाबा इनको जानते थे कि ये कृष्ण की भक्ति करती है, तो बाबा ने उस समय एक स्कूल भी खोला था। बाबा एक स्कूल के का वो माना उनका भी संरक्षक थे। उस स्कूल में बाबा चाहते थे कि छोटे छोटे बच्चे पढ़े और उनकी जो टीचर हो उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी दे, केवल वो लौकिक विद्या नहीं पर आध्यात्मिक शिक्षा भी साथ साथ दे। तो वो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे और बोर्डिंग स्कूल बाबा ने बनाया था और बाबा चाहते थे कि जो उनकी टीचर हो वो नौकरी के हिसाब से नहीं पढ़ाए लेकिन अपना जीवन भगवान को अर्पित करके पढ़ाए, एक नोबल कार्य समझ करके बच्चों को पढ़ाए। अब जब दादी प्रकाशमणि जिनका नाम रमा था उस समय, अब ये जब बाबा के पास पहुंची और बाबा जानते थे ये कृष्ण की बहुत भक्ति करती है, तो जब ये ध्यान से उतरी तो बाबा ने इनको कहा कि देखो ऐसा मैंने जो स्कूल है उसमें तुम पढ़ाओगे और उसके लिए अपने जीवन को श्री कृष्ण को अर्पित करना पड़ेगा, आप तो वैसे ही आपका जीवन कृष्ण को ही अर्पित है। तो उसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं क्योंकि माता पिता की आज्ञा बिना तो कुछ भी नहीं करते बच्चे। तो जब पिता को ये बात कही तो पिता को तो इतनी खुशी हुई कि मेरी बेटी तो है ही श्री कृष्ण को अर्पित, और तुरंत उसने चिट्ठी लिख के दी कि मैं अपनी बेटी को श्री कृष्ण को अर्पित करता हूँ। अब ये दो एग्जाम्पल आपको दिए और उस समय देखते देखते इतनी कन्याएं माताएं परिवार के परिवार बाबा के पास आ गए समर्पित होने लगे, ये सब परमात्मा की शक्ति काम कर रही थी। तो एक दूसरी क्रांति हो गई कि जिन माताओं बहनों के प्रति इतना शोषण था, इतने वो पर्दे नशीन रहती थी उस समय, उनके आगे कोई सोशल एक्टिविटीज नहीं, स्पिरिचुअल तो छोड़ो सामाजिक गतिविधियां भी उनके आगे कुछ नहीं थी, बस चार दीवारों में ही रहना। और जो पुरुष लोग थे वो तो बड़े बिजनेसमैन थे सिंधी लोग, सारे विश्व में उनकी बिजनेस और उनकी स्त्रियां बच्चे मनस वो एकदम चार दीवारों में, और ये इनके अंदर एक नई शक्ति जागृत हो गई आध्यात्मिक शक्ति। तो कुछ तो परिवार के परिवार भी समर्पित हुए, तो ये दूसरी क्रांति हुई कि कन्याओं माताओं में एक आध्यात्मिक शक्ति आई। और परमात्मा कहते थे जब नारी शक्ति आध्यात्मिकता में जागेगी तब इस विश्व का परिवर्तन होगा। यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवताओं का वास है। तो ये कैसे परमात्मा ने अनुभव कराया और वो बहने आकर के समर्पित होने लगे। तो करीब 385 भाई बहने, बाबा का बहुत बड़ा भवन था, बहुत कुछ था, तो बहुत मकान थे, बिजनेसमैन थे और काफी सारी उनकी प्रॉपर्टी थी, वो सब समर्पित हो गए। फिर शिव परमात्मा ने कैसे अब एक तीसरी क्रांतिकारी बात शुरू की, और वो क्या थी, जितने भी थे समर्पित उन सब के आगे एक प्रतिज्ञा करवाई उन सबको, और क्या प्रतिज्ञा थी कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। ये सब ईश्वर की शक्ति काम कर रही थी। तो सब ने ये प्रतिज्ञा की हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। अब ये भी एक बड़ी न्यूज बन गई। तो थोड़ा सा विरोध हुआ कि अब ये छोटी छोटी कन्याएं और इनको आपने ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा करा दी। तो बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, पर वो ईश्वर की शक्ति कार्य कर रही है, जो वो मुझे आज्ञा दे रहे मैं भी वही कर रहा हूँ, इसलिए उसकी शक्ति का के आगे मैं भी झुका हुआ हूँ, इसलिए मैं नहीं हूँ। अब वो ईश्वर की शक्ति को कहाँ पहचानेंगे लोग, वो तो समझते थे कि यही कर रहा है। तो बाबा ने क्या सोचा कि अब वो जो हैदराबाद सिंध तो वैसे ही छोटा शहर था, तो बाबा वहां से कराची चले गए। कराची में जो स्वतंत्र थे 18 साल से ऊपर थे वो तो, और फैमिलीज भी थी वो तो जिनको पूरी छुट्टी थी, तो उन सबको बाबा कराची ले गए। और कराची में 1937-38 से लेकर 1950 तक 13-14 साल बिल्कुल टोटल आइसोलेशन, सारी दुनिया की निगाहों से दूर, ये करीब 350-400 बहने जो थी और कुछ भाई भी थे, बिल्कुल एकांतवास में तपस्या करने लगे। कराची में सागर का किनारा है, जैसे मुंबई वैसे कराची है, बड़ा शहर है, तो वहां पर वो सागर के किनारे पर जाती थी और सवेरे सवेरे तपस्या करती थी, एक्सरसाइज करती थी, ऐसे हाफ पैंट्स पहनती थी, मानो ये सब कन्याएं और कुछ कई माताएं, और क्लिफ्टन बीच है वहां, जैसे मुंबई में जुहू बीच है वैसे वहां बहुत सुंदर बीच है सागर का किनारा कराची में, तो वहां पर ये जाकर के तपस्या करती थी, मानो दुनिया की निगाहों से ये दूर थी। और ये 14 साल कैसे इनके बीत गए, जब हम उनसे पूछते थे, हमारी दादियां जो वरिष्ठ बहनें हैं जिनको दादी माना बड़ी बहन, हम उनको कहते हैं दादी, जैसे हिंदी में बड़ी बहन को दीदी कहते हैं, तो सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी कहते हैं, बड़े भाई को दादा कहते हैं, जैसे बंगाली भाषा में भी दादा कहते हैं बड़े भाई को। तो अब वहां पर उन्होंने दुनिया की निगाहों से दूर रह करके जो तपस्या की, तो बाबा और मम्मा ये अलौकिक माँ बन गई, क्योंकि इनसे राधे के दर्शन होते थे, उनसे कृष्ण के, और कैसे अलौकिक रूप से मात पिता के रूप में पालना की। और इन 14 सालों में दुनिया की स्थिति बदल गई। क्यों? पहले तो एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक, 6 साल तक विश्व युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए, और खास करके यूरोप का नक्शा ही बदल गया, कम्युनिज्म आ गया, मानो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत जो कुछ भी हुआ। और दूसरी तरफ भारत में महात्मा गांधी का आंदोलन शुरू हुआ, अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो, तो कैसे अंग्रेज गए तो जरूर लेकिन देश का बंटवारा करके गए, और रक्त की नदियां बही उस समय जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो कितनी रक्त की नदियां बही। तो एक और अणुयुद्ध भी हुआ, विश्व युद्ध तब खत्म हुआ जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी जापान पर बम गिराए, और जापान ने सरेंडर किया अमेरिका को, इंग्लैंड अमेरिका को, और विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो एक और ये विश्व युद्ध हुआ और अणु बम गिरा, गिरे दो अणु बम, वो तो छोटे बम थे। और उस समय शिव परमात्मा से पूछा गया, क्या यही विनाश है? तो बाबा ने, शिव परमात्मा ने कहा, नहीं ये तो रिहर्सल है। अभी जो देखा ना हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरे, पूरे शहर के शहर तबाह हो गए, ये तो रिहर्सल है। फिर उसके बाद जब सिविल वॉर लगी भारत के अंदर, रक्त की नदियां बही बंटवारे के कारण, तो उस समय भी बाबा से पूछा गया, क्या यही विनाश है? कहा नहीं ये तो रिहर्सल है। तो सिविल वॉर का रिहर्सल क्या होता है भारत में, वो भी उस समय देखा। फिर तीसरी तरफ बहुत प्राकृतिक आपदाएं भी आई, अणु युद्ध, प्राकृतिक आपदा में भूकंप आए, बाढ़ आए, सुनामी आए, बहुत कुछ आया, बहुत नुकसान हुआ। पर बाबा कहते थे ये सब रिहर्सल है। तो वो जो 14 साल ये बीता, पर ये जो संस्था थी बिल्कुल बाल भी बांका नहीं हुआ इनका, परमात्मा की उनको पूर्ण रक्षा मिली, क्योंकि अंदर ही अंदर तपस्या करते थे परमात्मा की स्मृति में। और बंटवारे के बाद कराची पाकिस्तान में चला गया, लेकिन कैसे परमात्मा ने इनकी रक्षा की और इनकी तपस्या चलती रही। फिर 1950 में जब भारत गणतंत्र बना, तब शिव परमात्मा का इनको आदेश मिला कि अभी भारत जाओ, भारत ही विश्व का लाइट हाउस बनेगा, भारत ही दुनिया का गुरु बनेगा, आध्यात्मिक मार्ग दिखाएगा, शांति स्थापित करेगा, मानो भारत की महिमा गाई, और भारत से आपको सारे विश्व में परमात्मा का संदेश देना है। ये परमात्मा का उनको आदेश मिला। तो कराची सागर के किनारे थे और बाबा ने, शिव परमात्मा ने उनको आदेश दे, पहाड़ पर जाओ, पहाड़ से आपको विश्व को शांति के प्रकंपन फैलाने हैं। तो ये माउंट आबू जो पहाड़ है, आप जाएंगे देखने के लिए या कोई देख के भी आए होंगे, ये कराची से बहुत दूर नहीं है। आप जाएंगे वहाँ पीस पार्क देखने जाएंगे तो बिल्कुल वहाँ से आप देखेंगे 4000 फीट की ऊंचाई पर है जो माउंट आबू, और सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट आबू की, ये अरावली पहाड़ है, अरावली रेंज वेस्टर्न तरफ है, इनकी चोटी 6000 फीट की ऊंचाई पर है। तो वहां से आप नीचे देखेंगे, वहां भी पहाड़ है चार, और उसके पीछे कराची है, तो बहुत दूर नहीं है, पश्चिमी बॉर्डर है भारत का। तो बाबा ने उनको कहा कि आपको पहाड़ पर जाना है, तो माउंट आबू चुना, क्योंकि माउंट आबू जो स्थान है उसकी अपनी विशेषता है, एक तीर्थ स्थान भी है, बहुत मंदिर है माउंट आबू में, और दूसरा ये राजाओं का स्थान है, क्योंकि राजस्थान तो है ही, राजाएं महाराजाएं यहाँ बहुत रहते हैं चारों तरफ, तो माउंट आबू ये अक्सर आया करते थे, खास करके गर्मियों में, तो अप्रैल मई जून जितने भी रजवाड़े हैं यहाँ चारों तरफ, उनके राजा माउंट आबू में अपना समर कैपिटल बनाते थे। तो बहुत सारे महल हैं माउंट आबू में, जो जब गणतंत्र हुआ और सारे रजवाड़े सब एक प्रजातंत्र में समाये, तो उस समय उन्होंने वो जो महल थे उनको या तो होटल बना दिया है या तो स्कूल बन गए हैं, स्कूल या होटल, वहाँ स्कूल भी चलते हैं। अलवर पैलेस है ऊपर माउंट में, तो वो तो आर्य समाजियों का स्कूल है, बाकी होटल्स हैं चारों तरफ माउंट आबू में। तो इसीलिए माउंट आबू ऐसा स्थान है, तो एक और तरफ तीर्थ है, दूसरी तरफ वो टूरिस्ट प्लेस भी है। और कैसे यहाँ परमात्मा ने अपना स्थान बनाया विश्व सेवा के लिए, तो 1950 में जो उस समय की सरकार थी सिंध की, उनका जो चीफ मिनिस्टर था वो बहुत ही सहयोगी था, बाबा का एक मित्र जैसा भी था, तो उसने पूरी सुविधा दी कि आप को जो ले जाना चाहते हैं आप सब ले जाइए। और तो देखिए सारा बिस्तरा बोरी सब कैसे पैक किया है, एक सुई भी नहीं छोड़ी वहां, नहीं तो जो भारत से पाकिस्तान से आए भाग करके आए वे तो नंगे पैर, हाथ खाली, जेब खाली, सब प्रॉपर्टी छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए भागे थे। आपके भी कोई रिश्तेदार होंगे जिनके रिश्तेदार वहां से आए, हाथ उठाए, कोई है? कोई नहीं, किसी के भी नहीं, अच्छा पता ही नहीं या पता तो होगा, इतिहास में पढ़ा तो होगा, खास करके लाहौर से या सिंध से या कई जगह जो इस समय पाकिस्तान के अंदर है वहां से कैसे भागे। तो बाबा तो उस समय कैसे परमात्मा ने इनकी रक्षा की और ये सब कुछ लेकर के आए और एक स्टीमर भी दिया उनको, शिप दिया, जिस शिप में अपना सब कुछ ले आए, जो 300 350 400 के अंदर भाई बहने थे वे आए और माउंट आबू में अपना स्थान बनाया। ये शिप में बैठे हैं, जहाज में बैठे हैं। और फिर ओखा बंदरगाह है सौराष्ट्र में, वहाँ शिप उतरा और वहाँ से बाय ट्रेन आबू आई है। ये 1950 की ट्रेन है। देखिए कैसे 14 साल के बाद दुनिया देखी इन्होंने और आबू रोड स्टेशन पर उतरे हैं और वहाँ से माउंट आबू आए। तो माउंट आबू में एक तरफ तो महल भी है, तीर्थ स्थान है, मंदिर है, पर दूसरी ओर जंगल है, घना जंगल। अभी तो इतना नहीं रहा लेकिन उस समय तो घना जंगल था, चीते भी थे, भालू तो बहुत है। अभी भी अंधेरे में हम जा भी नहीं सकते बाहर, भालू तो बहुत घूमते हैं। तो इसीलिए बाबा कैसे पहाड़ों पर बैठ करके तपस्या करते थे, मम्मा भी तपस्या करती थी, और ये तपस्या करते करते कैसे चारों ओर प्रकंपन फैलाते थे। तो ये बाबा मम्मा और उनके साथ और बहनें पहाड़ों पर बैठ करके तपस्या करते थे, ये कुछ दृश्य है उसके। और इसका मैं खास वर्णन करना चाहूंगी, आप मनोहर इंदिरा दादी हैं, आप भी 12 साल की उम्र में ज्ञान में आई हैदराबाद सिंध में, और आपके जो रिलेटिव से रिश्तेदार थे वो दिल्ली में रहते थे। तो उन्होंने जब पता चला कि ये हमारी बहन माउंट आबू आई है, ये संस्था माउंट आबू में आ गई है, तो इनको निमंत्रण दिया कि आप दिल्ली में आइए और आकर के आपने जो 14 साल तपस्या की वो हमें भी उसका अनुभव कराइए। तो ये भी बहुत अच्छा ओम की ध्वनि करती थी, बहुत सुरीली आवाज थी। तो ये जब दिल्ली गई तो वहाँ अपने परिवार के सामने ओम की ध्वनि की, और जैसे ही ओम की ध्वनि करती रही इनके रिश्तेदारों को इनमें से देवी का साक्षात्कार हुआ, देवी दुर्गा अम्बा सरस्वती, मानो वो देवी का साक्षात्कार इनसे हुआ। तो इतनी भावना बैठ गई कि पहाड़ों से देवी आई है, देवी आई है। फिर तो मंदिरों से निमंत्रण मिलते गए तो वहाँ भाषण करती थी, फिर जमुना किनारे पर जाकर के आप भाषण करती थी। इतने भाई बहन इकट्ठे हो जाते थे और फिर इसने कहा मैं तो वापस जाऊंगी माउंट आबू, क्योंकि वो तो रिश्तेदारों के निमंत्रण पर आई थी दिल्ली। तो उन भाई बहनों ने कहा कि आप कैसे जाएंगी हमको छोड़ करके। तो इसने बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि बच्ची अगर वो चाहते हैं कि आप उनको उनकी सेवा करते रहें तो उनको को एक मकान लेकर के दो, तब हम आपकी सेवा कर सकेंगे अलग रहकर, परिवार में तो घर में पैसे मुश्किल होता है। तो उन्होंने मकान लेकर के दिया। ये क्यों कह रहे, क्योंकि पहला सेवा केंद्र आबू से बाहर दिल्ली में खुला और दिल्ली में आपके द्वारा स्थापित हुआ। और उसके बाद तो जो भी हमारी बड़ी वरिष्ठ बहनें थी उनके रिश्तेदारों ने बुलाया और सब जगह वो जाती रही और भारत के कोने कोने में सेवा केंद्र खुलते गए। फिर वहां से भाई बहने माउंट आबू आते थे और मम्मा बाबा से मिलते थे, मम्मा भी बाहर जाते थे। उस समय यूपी में बहुत सेवा केंद्र खुले, तो लखनऊ कानपुर वहां पर बहुत भाई बहने आते थे और मम्मा का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत स्वागत करते थे। पर मम्मा की कैसे वो ध्यान में ज्यादा जाती थी, कैसे तपस्या करती थी। और दादी प्रकाशमणि वो मम्मा के साथ बहुत ट्रैवलिंग करते थे, तो दादी प्रकाशमणि भी मम्मा के साथ साथ रह करके बिल्कुल जैसी ही अनुभवी हो गई। और धीरे धीरे मम्मा ने विदेह स्थिति को प्राप्त किया और 1965 24 जून को एट द एज ऑफ 46 में 46 वर्ष की उम्र में आपने अपना देह त्याग किया। लेकिन आप ने वो शक्ति कमाई, वो प्राप्ति की, अपनी आत्मा को इतना श्रेष्ठ बनाया जो वो ये यज्ञ पूरा शक्तिशाली बन गया था। फिर दीदी मनमोहिनी वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने बहनों को आगे रखा, तो पहले मम्मा संभालती थी, फिर दीदी मनमोहिनी। अब इनकी भी विशेषता है, आप बहुत धनाढ्य परिवार के थे, इनके जो परिवार वाले थे, पिता थे, चाचे वगैरह थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लंदन, अमेरिका, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, सब जगह उनकी बिजनेस थे। तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो वो सब मुंबई आ गए, और मुंबई में केसी कॉलेज, जसलोक हॉस्पिटल, उन्होंने सिंधियों ने मुंबई में आकर के कॉलेज स्थापित किए और हॉस्पिटल स्थापित किए। तो ये उसी परिवार की थी, तो ये तो धक से समर्पित हो गई बाबा के पास। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगी और 1983 में आपने अपना देह त्याग किया। 65 से लेकर 83 तक आप एडमिनिस्ट्रेशन करती रही, लेकिन 69 मम्मा के बाद, 65 के बाद ब्रह्मा बाबा चारों तरफ जाते थे, कई सेवा केंद्रों पर जाते थे, भाई बहने माउंट आबू आते थे और परिवार के परिवार माउंट आबू में आते थे, और बाबा अलौकिक मात पिता के रूप में कैसे पालना करते थे। पर एक ही बाबा ने हमें लक्ष्य दिया कि परमात्मा एक है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, सदा शिव है, कल्याणकारी है। तो धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, देश, ये जो हदें हमने बना के रखी है, इन सब को तोड़ना है और एक वसुधैव कुटुंबकम समझकर, सबका मालिक एक है ये समझ करके सबके साथ चलना है। तो ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में रहे, वहाँ पांडव भवन है, वहाँ ब्रह्मा बाबा जहाँ रहते थे वो आप देखने गए होंगे या जाएंगे देखने। बाबा सबको पत्र लिखते थे, और ये क्यों हमने ऐड किया है, क्योंकि मेरा भी ये सौभाग्य रहा कि ब्रह्मा बाबा के हस्तों का पत्र मुझे भी मिला था। बाबा को जो पत्र लिखते थे बाबा उनको जवाब जरूर लिखते थे, क्योंकि मैं 1967 में इंटर साइंस पढ़ रही थी और डिसीशन लेना था कि आगे क्या मैं करूं, क्योंकि उसी समय डिसीशन होती है। सेकंड ईयर कॉलेज का था, इंजीनियरिंग पढ़ूं, मेडिकल पढ़ूं, ग्रेजुएशन करूं, क्या करूं। तो बाबा को मैंने पत्र लिखा था कि बाबा मैं क्या करूं, क्योंकि घर में कहते थे तो मेडिकल लाइन लो, MBBS करो, तो मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता मैं कौन सी लाइन लूं, तो बाबा को पत्र लिखा था, तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब मुझे दिया पत्र में। 67 की ये बात है कि बच्ची, क्योंकि बाबा मुझे जानते थे, मैं बाबा के आगे इंग्लिश में भाषण करती थी, बहुत कुछ एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स में भी मैंने बहुत भाग लिया था, स्कूल में, कॉलेजेस में अवार्ड्स भी लिए थे। तो बाबा को जब मैंने पत्र लिखा तो बाबा ने मुझे जवाब दिया कि बच्ची, बाबा की आप में बहुत उम्मीद है और बाबा चाहते हैं कि आप रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने मुझे पत्र में लिखा, रूहानी डॉक्टर। शरीर का डॉक्टर तो बहुत बनते, MBBS पास किया चलो फिजिशियन बन गए, या कुछ स्पेशलाइजेशन किया, MD किया तो कोई और बन गए सर्जन या जो कुछ भी, पर रूहानी डॉक्टर, रूहों का डॉक्टर, आत्माओं का डॉक्टर बनो, ये बाबा ने मुझे पत्र में लिखा। तो हमने यही निश्चय किया, निर्णय लिया, और फिर ग्रेजुएशन किया, BSc किया। पर 69 में ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, तो ये बाबा के हस्तलिखित पत्र हैं। बाबा उर्दू में लिखते थे, वहीं रहते थे हिंद सिंध हैदराबाद, तो एक बहन थी वो हिंदी करती थी, तो लाल अक्षर, लाल पेन, मोटी मोटी, तो बाबा उनसे लिखते थे। ये बाबा की झोपड़ी है पांडव भवन में, जहां बाबा बैठ करके पत्र लिखते थे, और चारों तरफ बगीचा भी है, बहुत एकांत का वातावरण है। और ये बाबा का हिस्ट्री हॉल है, जहां बाबा बैठ करके वाणी चलाते थे, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, जो रोज हम रिवाइज करते हैं, रोज सुनते हैं पांडव भवन में। और उस पांडव भवन में करीब 200 भाई बहने बैठ सकते हैं हॉल के अंदर। और ये बाबा का कमरा है जहाँ बाबा सोते थे, एक पलंग बहुत सिंपल, वहाँ बाबा ने इसी स्थान पर 18 जनवरी को अपना देह त्याग किया, पलंग पर ही बैठे थे। और कैसे दादी प्रकाशमणि जी उनके सामने थे और उसी समय बाबा ने अपना देह त्याग किया 18 जनवरी 1969 को, जब बाबा की उम्र 93 वर्ष की थी, 18 जनवरी 1969। और अभी हमने इस बार 48वां पुण्यतिथि या असेंशन डे, अव्यक्त दिवस मनाया 48 साल पहले। तो कैसे बाबा 93 वर्ष की उम्र तक भी ऐसे सीधे खड़े होते थे, आप सोचेंगे कैसे इस उम्र में भी ऐसे उनका बॉडी था। कभी बाबा ने चश्मा नहीं लगाया, कभी लकड़ी हाथ में नहीं उठाई, कभी कमर नहीं झुकी, ये परमात्म शक्ति उनके पास थी। और 21 जनवरी को 1969 में बाबा के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया आश्रम के अंदर ही, और उस स्मारिका का नाम रखा शांति स्तंभ। तो पांडव भवन में आप जाएंगे और पांडव भवन में शांति स्तंभ का भी अवलोकन करेंगे। 18 जनवरी के दिन हजारों भाई बहने माउंट आबू में पांडव भवन में आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन ब्रह्मा बाबा को अर्पित करते हैं। और ये चार धाम, जैसे चार धाम की यात्रा करने जाते हैं ना, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये चार धाम है ब्रह्मा बाबा के याद के यादगार। एक तरफ है बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल जहाँ बाबा वाणी चलाते थे, और चौथा शांति स्तंभ जहाँ अंतिम संस्कार हुआ, समाधि है। तो ये चार स्थान, पांडव भवन जो ओरिजिनल हमारा हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू में, वो आप अवलोकन करने जाएंगे। कुछ तो देख के भी आए हैं, जो देख के आए हाथ उठाएं। अच्छा, इतने सारे देख के भी आए हैं, तो बाकी जो नहीं देख के आए हैं, परसों के दिन आपको जाना होगा वो देखने के लिए। और दादी प्रकाशमणि जी ने उसके बाद मनमोहिनी दीदी के साथ मिल करके सारी एडमिनिस्ट्रेशन संभाली। तो 69 से 2007 तक दादी प्रकाशमणि जी ने संभाला। और दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी, इन दोनों को कहते थे दो हंसों का जोड़ा। कैसे दोनों ने मिलकर, भले दो शरीर थे लेकिन हम कहते एक आत्मा थी, क्योंकि इतना आपस में सामंजस्य था, इतना उनमें जो तालमेल होती थी विचारों की, संस्कारों की, स्वभाव की, कैसे दोनों ने मिल करके ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला इस विश्वविद्यालय का। और ब्रह्मा बाबा के देह त्याग के बाद दिन दुगनी रात चौगनी गति से इस संस्था की वृद्धि होती गई। और कैसे दोनों ने इस कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया, तो हम दोनों को देखते थे। मेरा सौभाग्य रहा कि माउंट आबू में रहकर 1976 से हम माउंट आबू में ही रहते हैं, उसके पहले विदेशों में थे, 69 में हम समर्पित हुए। तो कैसे इन दादियों के संग रहने का भी मुझे अच्छा मौका मिला। और ब्रह्मा बाबा ने जिनकी पालना की, वो सब दादियां हमारी वरिष्ठ बहनें, जिनों के सानिध्य में रह करके हम लोगों ने इतनी प्रेरणा ली, और कैसे इन्होंने इस ईश्वरीय कार्य को देश विदेश में फैलाया। तो विदेशों में हमारा सेवा केंद्र हमारे शुरू हुए, सबसे लंदन में शुरू हुआ 70 के बाद, और वहां से भी विदेश के भाई बहने माउंट आबू आते रहे। फिर 1983 में पांडव भवन के सामने ओम शांति भवन का निर्माण हुआ, जहाँ 3000 भाई बहने बैठ सकते हैं, जहाँ हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज की, पीस कॉन्फ्रेंसेज की, यूनिवर्सल हार्मनी कॉन्फ्रेंसेज की, अनेक संतों को, अनेक धर्म वालों को, सबको हम बुलाते रहे हैं। और 91 में ज्ञान सरोवर परिसर बना, जो माउंट आबू में जो हमारी एकेडमी है, हर एक वर्ग के भाई बहनों के लिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं। 91 में ही ग्लोबल हॉस्पिटल का निर्माण हुआ माउंट आबू में, जहां कई प्रकार की पैथीज चलती है, इसमें होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, और गांव गांव में जाकर के सेवाएं करते हैं। ये भी बहुत बड़ा कार्य है। और 96 में यहाँ शांति वन में, जो सामने आप डायमंड हॉल देख रहे हैं, उसका निर्माण हुआ। वो हमारा डायमंड जुबली ईयर था, 60 साल हुए थे 96 में, 36 to 96, तो इसलिए उस हॉल का नाम रखा है डायमंड हॉल, डायमंड जुबली हॉल। और इसमें, उस हॉल में 20,000 भाई बहने बैठ सकते हैं विदाउट पिलर्स, कोई पिलर नहीं है, और इतना बड़ा हॉल का निर्माण किया। वो 96 में शुरू हुआ और ये चारों ओर शांति वन फैलता गया। दादी प्रकाशमणि जी ने 85 साल की उम्र में इन 2007 25 अगस्त को अपना देह त्याग किया, और दादी जी का पार्थिव देह डायमंड हॉल के सामने ही वहां ही अंतिम संस्कार किया गया। और उसी दादी प्रकाशमणि की स्मृति में प्रकाश स्तंभ बना है, जहां आपने देखा होगा। और वर्तमान समय हमारी मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी है। आप 20 साल की उम्र में, 20-21 साल की उम्र थी जब आप इस संस्था में जुड़ी, और इस समय दादी जानकी जी की आयु 101 साल है, 101 years, और इतनी एक्टिव है अभी भी। आज दादी जी मेहसाना में हैं, मेहसाना यहाँ गुजरात में है। कल दादी जी अहमदाबाद में थे, अहमदाबाद में बहुत बड़ी जमीन ली है, बहुत बड़ी जमीन, और एक ग्लोबल मानो गुजरात के लिए एक रिट्रीट सेंटर या बहुत कुछ बनाया है, बनाने के लिए फाउंडेशन डाला। और आज दादी जी मेहसाना में है, यहाँ गुजरात में ही, जहाँ एक बहुत बड़े और रिट्रीट सेंटर का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन करने दादी गए हैं, कल है उद्घाटन। और दादी जानकी जी के साथ कैसे, दादी जानकी जी अनेक प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेते रहे हैं। यहाँ पास में दादी प्रकाशमणि जी का ट्रेनिंग सेंटर है, वो भी आपने देखा होगा, जहाँ समय प्रति समय कुमारियाँ टीचर्स की ट्रेनिंग या रिफ्रेशर कोर्सेज अलग अलग होते रहते हैं। और मासेस में 1,00,000 की सभा में भी दादी जानकी जी के भाषण होते हैं। दादी जानकी के साथ सह मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी हैं, जिनको हम गुलजार दादी जी कहते हैं। आप भी 9 साल की उम्र में ज्ञान में आई, 1936 में, 9 साल, और अभी आपकी उम्र लगभग 90 साल है। आप यहाँ ही रहते हैं, इस समय आप मुंबई में हैं, तो इसीलिए न दादी जानकी भी नहीं है, दादी हृदय पुष्पा भी नहीं है। दादी हृदय पुष्पा मुंबई में, दादी जानकी जी मेहसाना में। अब कब लौटेंगे दादी जानकी पता नहीं है, लेकिन दोनों इस समय यहाँ नहीं है। दादी रतन मोहिनी जी जो हमारी ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो भी अहमदाबाद में ही है। वहाँ बहुत बड़ा यूथ कॉन्फ्रेंस चल रही है, यूथ के लिए, वहाँ महादेव नगर है अहमदाबाद में, तो वहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। दादी रतन मोहिनी जी वहाँ गए हुए हैं, इसलिए तीनों जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाली दादियाँ हैं इस समय नहीं हैं। परंतु कल निर्वैर भाई से आप मिले ना, उद्घाटन कल हुआ ना, आज हुआ, कल हुआ, कल तो उनसे आप मिले, औरों से भी आप मिले होंगे। तो दादी हृदय मोहिनी जी की विशेषता है कि आप 9 साल की उम्र में आई, और जैसे आई पहले दिन से ध्यान में चली गई, और आपने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। तो आपकी ये विशेषता है, बहुत ट्रांस में जाते हैं, और कैसे ट्रांस में जाते हैं, और शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा इनके तन में प्रविष्ट होते हैं, और प्रवेश होकर के वाणी चलाते हैं, जिसको हम अव्यक्त वाणी कहते हैं, और अव्यक्त बाप दादा कहते हैं। तो बाप माना शिव परमात्मा, दादा माना ब्रह्मा बाबा, एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, आत्मा रूप में तो भाई भाई है। हम इनको भगवान नहीं कहते, कई समझते हैं कि आप शायद इनको भगवान कहते हैं, परमात्मा तो एक है, कल सवेरे आपका आपको उनका परिचय देंगे, लेकिन जिनके माध्यम से परमात्मा ने ये ईश्वरी कार्य शुरू किया उनका नाम पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनको हम ब्रह्मा बाबा कहते, दादा यानी बड़ा भाई कहते हैं। तो अव्यक्त बाप दादा इनके तन में प्रविष्ट होके वाणी चलाते हैं, जिनको अव्यक्त वाणी कहते हैं, और वो हम रिले करते हैं अपने पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आप लोगों ने सुनी होगी, देखा होगा, जिन्होंने देखा है अपने वहाँ वो हाथ उठाए। अच्छा, थोड़ों ने तो जरूर चैनल पर हम चलाते हैं, रिले करते हैं, और लेकिन फिर भी भले देखा भी हो या न भी देखा हो तो भी आपकी ये इच्छा तो होगी ना कि हम विशेष सम्मुख रूबरू आके मिले देखें, तो अवश्य आप आ सकते हैं। हमारे हजारों भाई बहने आते हैं, देश विदेश से आते रहते हैं, अभी शिवरात्रि पर तो बहुत भाई बहने होंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक नियम है, वो नियम क्या है कि नियमित विद्यार्थी बने हमारे विद्यालय के सेवा केंद्रों पर, और जो हमारी और धारणाएं हैं शुद्ध अन्न सत्संग ये सब जो नियम हैं उनका पालन करें तो अवश्य आ सकते हैं ऐसे मौकों पर प्रोग्राम्स में। तो हम कहते हैं यहाँ आप तीर्थ स्थान पर आए हो तो तीर्थ स्थान पर कुछ दान करके जाना है, तो हम कौन सा दान आपसे मांगते हैं? हम कहते हैं 5 खोटे पैसों का दान करो। कौन से हैं खोटे पैसे? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और एक आना लेकर के जाओ, वो यहाँ से परमात्मा की देन लेकर जाओ, यानी एक बार रोज सेवा केंद्र पर जाकर के ज्ञान योग सीखना समझना अनुभव करना अभ्यास करना, ये आपसे हम आपको अब संकल्प देंगे। तो कुछ देके जाना है कुछ लेके जाना है, तो देखो आपका जीवन कितना ऊंचा श्रेष्ठ बन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, ओम शांति। तो 80 मिनटों में आपको 80 वर्षों की सैर कराई। हाँ, क्या कर ली सैर आपने? पहुंच गए 36 से लेकर के 2017 तक, 16-17 तक। ओम शांति।